ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त पेंशनर्स के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों में कैशलेस सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की। कोलकाता में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर आज दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। जल मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में सीवर ओवरफ्लो से संबंधित समस्याओं की निगरानी और उसका जल्द समाधान करने के निर्देश दिए और दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने बताया है कि सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें पैनलबद्ध अस्पतालों में कैशलेस सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की है। विद्युत मंत्री आतिशी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स के सारे चिकित्सा खर्च दिल्ली सरकार की कंपनी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड उठाएगी। वहीं 2002 के बाद जिस भी ट्रांसमिशन कंपनी, जनरेशन कंपनी या डिस्कॉम कंपनी से लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके मेडिकल क्लेम का भुगतान उस कंपनी द्वारा किया जाएगा। सुश्री आतिशी ने बताया कि इस फैसले से दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
सारे डीवीबी पेंशनर्स को ओपीडी फैसिलिटी, आईपीडी फैसिलिटी, हॉस्पिटल एडमिशन अब 100% कैशलेस माध्यम से अवेलेबल हो। तो जिस भी यूटिलिटी के साथ इन 20,500 पेंशनर्स को लिंक किया गया है, प्री 2002 और पोस्ट 2002 पेंशनर्स को, उस यूटिलिटी की जिम्मेदारी रहेगी उनको सारे मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की। और अब सारे दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी।
कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर आज दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि यह हड़ताल आज सुबह 6 बजे से शुरू है जो कल सुबह 6 बजे तक चलेगी। इस वजह से दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान एम्स, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, लोकनायक अस्पताल, लेडी हार्डिंग, सफदरजंग अस्पताल समेत कई प्रमुख सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर आज ओपीडी में अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली एम्स ने मरीजों की सुविधा के लिए इमरजेंसी को बाधित न करने का फैसला लिया है, लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से व्यापक जनहित में कार्य पर लौटने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ घटना के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मुलाकात की। एसोसिएशन ने कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर अपनी चिंता के बारे में अपनी मांगें रखी। मंत्रालय ने प्रतिनिधियों की मांगों को सुना और उन्हें स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर आज पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि वे इस घटना के खिलाफ आवाज उठा रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने न्याय के लिए आवाज उठा रहे 43 डॉक्टरों का तबादला कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस सोशल मीडिया पर घटना के खिलाफ बोलने पर लोगों को धमकी दे रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को राजधानी में सीवर ओवरफ्लो से संबंधित समस्याओं की निगरानी और उसका जल्द समाधान करने के तत्काल निर्देश दिए हैं। सुश्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से सीवर ओवरफ्लो होने से जगह जगह पीने का पानी दूषित हो रहा है। अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो यह गंभीर स्वास्थ्य संकट बन सकता है। सुश्री आतिशी ने सीवर समस्याओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक मंकी पॉक्स का कोई मरीज सामने नहीं आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक बैठक में मंकी पॉक्स की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय किए जाने का निर्णय लिया गया। इसमें किसी मरीज के सामने आने पर सभी हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ग्राउंड क्रॉसिंग पर स्वास्थ्य इकाइयों को संवेदनशील बनाना, परीक्षण प्रयोगशालाओं को तैयार करना और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार रखना शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक संयुक्त निगरानी समूह की बैठक कल आयोजित की गई थी। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय द्वारा ऑटो संवाद अभियान की घोषणा को सिर्फ एक दिखावा बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है तो आम आदमी पार्टी ऑटो वालों की बात करती है। श्री सचदेवा ने कहा है कि आज दिल्ली के ऑटो वाले खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने 2013 और 2015 के विधानसभा चुनावों में ऑटो वालों से परमिट में कथित भ्रष्टाचार को रोकने, नए ऑटो स्टैंड बनवाने और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा व्यवस्था जैसे कई वायदे किए जो आज तक पूरे नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज दोपहर नई दिल्ली में हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनावों के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य प्रभारी और सह प्रभारी, राज्य भाजपा अध्यक्ष और राज्य भाजपा संगठन महासचिव सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा पदाधिकारियों की यह पहली बड़ी बैठक थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त पेंशनर्स के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों में कैशलेस सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की। कोलकाता में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर आज दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। जल मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में सीवर ओवरफ्लो से संबंधित समस्याओं की निगरानी और उसका जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। और दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने बताया है कि सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने बताया है कि सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। एक रिपोर्ट।
DMRC ने बताया कि स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर संचालित करने के साथ ही अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। DMRC ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे टिकट काउंटरों पर भीड़ से बचने के लिए QR टिकट खरीदने के लिए DMRC ट्रैवल मोबाइल ऐप, WhatsApp, Paytm, वन दिल्ली, अमेजन का उपयोग करें। दिल्ली मेट्रो का कहना है कि रक्षाबंधन पर यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर गार्ड या ग्राहक सुविधा एजेंट भी तैनात किए जाएंगे। करिश्मा की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए द्वारका जिले से एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए तस्कर की उम्र 28 साल है, जिसके खिलाफ पहले से 5 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक डॉ गीता गोपीनाथ ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की वृद्धि दर उम्मीद से कहीं बेहतर रही और उम्मीद है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सुश्री गोपीनाथ ने नई दिल्ली में एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि भारत को अगले 5 से 6 वर्षों में रोजगार के लाखों अतिरिक्त अवसर पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उम्मीद है कि निजी खपत में सुधार होगा और अनुकूल मानसून से फसलों की पैदावार बढ़ेगी। सुश्री गोपीनाथ ने कहा कि दोपहिया वाहनों की बिक्री से लेकर तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान तक भारत में कुल खपत बढ़ रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने यात्री वाहनों, तिपहिया वाहनों, दोपहिया वाहनों और क्वाड्री साइकिल का कुल उत्पादन 24,37,000 यूनिट से अधिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होने तथा एक दूसरे की ताकत बनने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने आज तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल सम्मेलन में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में अनिश्चितता और चुनौतीपूर्ण मौजूदा वैश्विक माहौल पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विश्व अभी कोविड के प्रभाव से पूरी तरह नहीं उबरा है और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे टकरावों से ग्लोबल साउथ देशों की विकास यात्रा के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि ये देश जलवायु परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव और क्षमताओं को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देश विकास की चुनौतियों, प्राथमिकताओं और समाधानों पर विचार विमर्श जारी रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। आकाशवाणी से हर घंटे प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों के प्रसारण क्रम में संशोधन किया गया है। ये बदलाव 18 अगस्त को मध्यरात्रि 12 बजे से प्रभावी होगा। 5 मिनट के हिंदी समाचार बुलेटिन के प्रसारण के बाद 5 मिनट के अंग्रेजी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के साथ ही कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। देश की शीर्ष महिला पहलवान विनेश फोगाट आज सुबह पेरिस से स्वदेश लौट आई। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचने पर प्रशंसकों ने विनेश का भव्य स्वागत किया। विनेश के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भी उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। विनेश को महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश ने इसके खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट सीएस में अपील की थी, इसलिए उन्हें पेरिस में ही रुकना पड़ा था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद संयुक्त रजत पदक की उनकी अपील खारिज कर दी थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त पेंशनर्स के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों में कैशलेस सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की। कोलकाता में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर आज दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। जल मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में सीवर ओवरफ्लो से संबंधित समस्याओं की निगरानी और उसका जल्द समाधान करने के निर्देश दिए और दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने बताया है कि सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।